भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार का पूरा जोर स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कहते हैं कि सरकार गरीबों को सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की योजना पर काम हो रहा है। मनसुख मंडाविया इस बारे में बताते हैं।
देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए, ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। माता उसके बेटे, नवजात शिशु से लेके छोटी उम्र के बच्चे, डायबिटिक पेशेंट की जांच, टेस्टिंग, बीपी, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ये सभी की प्राइमरी लेवल पर जो चेकअप हो जाए तो हम नागरिक को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के प्रयास भी हो रहे हैं। मनसुख मांडविया कहते हैं कि 157 नए मेडिकल कॉलेज को सरकार मंजूरी दे चुकी है।
जब आपको हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना है और सुनिश्चित करना है तो आवश्यकता होती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स का एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज की। मोदी जी ने कहा पहले 3 लोकसभा सीट में 1 मेडिकल कॉलेज बनेगी, उससे आगे बढ़ना शुरू किया और हर डिस्ट्रिक्ट में 1 मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम चालू किया। 157 नई मेडिकल कॉलेज मंजूर किया।
कोरोना के पहले और दूसरे लहर के दौरान लचर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफॉर्मेशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों को दूर कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक विकास शील का कहना है कि हर जिले में हेल्थ इंफ्रा विकसित किया जाएगा।
रिसर्च के दृष्टिकोण से देश में ICMR की 80 वायरल डायग्नोस्टिक लैब्स अभी कार्यरत हैं। उनमें गैप एनालिसिस करके इन सभी लैब्स का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 15 नई बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स स्थापित की जाएंगी।
और बात उत्तर प्रदेश में गर्माते राजनीतिक माहौल की। राज्य में विधानसभा के चुनाव अगले साल के शुरू में होने वाले हैं। सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार दिल्ली से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में अपना पांव जमाना चाहती है। पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को अयोध्या में थे। यूपी की सत्ता मिलने पर पार्टी क्या करेगी, इस बारे में केजरीवाल कहते हैं।
उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है।
केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने भगवान राम से लोगों की खुशहाली मांगी है।
प्रभु से दो ही चीज मांगे हैं, प्रभु से मांगे हैं एक तो अपने देश की लोगों के लिए सुख शांति, देश का विकास, और दूसरा कि प्रभु मुझे क्षमता दे और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को यहाँ पे लाके उनके दर्शन करा सकूं।
अरविंद केजरीवाल के राम प्रेम पर कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं,
पहले भगवान राम को गाली देते थे लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया।
कोरोना काल में यूपी के लोगों को दिल्ली से खदेड़ने का आरोप केजरीवाल पर लगाते हुए योगी आदित्यनाथ का कहना है,
आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए, और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी केजरीवाल की राम भक्ति पर सवाल उठाया है।
यह अच्छी बात है कि भगवान श्री राम के लिए अरविंद केजरीवाल जी के हृदय में पुनः आस्था जग गई है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था भगवान राम के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं था, और खास करके अयोध्या में मंदिर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी के किस प्रकार के विचार थे यह भी हमने देखा है।
यूपी में चुनाव को देखते हुए कई नेता मंदिरों और भगवान की शरण में हैं। और अंत में थोड़ी चर्चा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले की, जिसमें जमकर बयानबाजी हो रही है। इस मामले की जांच करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने और आर्यन को फर्जी तरीके से फंसाने के आरोप भी लग रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े ने कई लोगों को गलत तरीके से फंसाया है। समीर वानखेड़े पर जाति और धर्म की जानकारी छिपाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। नवाब मलिक कहते हैं कि समीर ने जाति की गलत जानकारी देकर नौकरी पाई है।
उनके पिताश्री अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट लोगों के सामने रिवील करें। आप नहीं करोगे तो सरकारी दस्तावेज कोई कितना भी नष्ट करने का काम करे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं। जिस तरह के बर्थ सर्टिफिकेट हमने निकाले, सारे दस्तावेज हमारे लोग निकाल रहे हैं, और जल्द ही ये मामला जो वैलिडिटी कमेटी है उसके सामने जाएगा।
आर्यन खान के मामले में एक गवाह ने समीर वानखेड़े पर रिश्वत का आरोप लगाया है। इसकी जाँच के लिए दिल्ली से एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी आज मुंबई आ रहे हैं। मुंबई पुलिस भी इससे जुड़ी कुछ शिकायतों पर अपनी जांच शुरू कर रही है। इस बीच आर्यन खान की जमानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। आर्यन के वकीलों का तर्क है कि उसने न तो ड्रग्स का सेवन किया है और न ही कोई ड्रग्स उसके पास से मिला है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी ही गलत है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।